नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीष शर्मा। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में कल रात एक अस्पताल पर हुए पाकिस्तानी हवाई हमले में 400 लोग मारे गए और करीब 250 घायल हो गए। तालिबान सरकार के प्रवक्ता जबीउल्ला मुजाहिद ने कहा कि पाकिस्तानी हवाई हमले में अस्पताल का एक बड़ा हिस्सा नष्ट हो गया है और घायलों की संख्या बढ़ सकती है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी सैन्य शासन ने एक बार फिर अफगानिस्तान के हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया है और काबुल में एक नशा मुक्ति अस्पताल को निशाना बनाया है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार प्रतिष्ठान ने इस हमले की निंदा करते हुए कहा है कि अस्पतालों जैसे सार्वजनिक स्थानों को निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ब्रसल्स में यूरोपीय संघ के विदेश मंत्रियों के साथ मुलाकात की। उन्होंने ईरान और यूक्रेन के संघर्ष को लेकर चर्चाएं की और यूरोप के साथ भारत के संबंधों को प्रगाढ़ बनाने पर भी बातचीत की। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन और जर्मनी, ग्रीस और बेल्जियम के विदेश मंत्रियों के साथ अलग अलग बैठकें भी की। जर्मनी के विदेश मंत्री जोहान वाडेफुल के साथ बातचीत के बाद डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि उन्होंने पश्चिम एशिया में संघर्ष को लेकर विचारों का आदान प्रदान किया। ईरान स्थित भारतीय दूतावास ने ईरान में रह रहे भारतीय नागरिकों को सख्त सलाह दी है कि वो तेहरान स्थित भारतीय दूतावास से पूर्व और स्पष्ट समन्वय के बगैर आगे की यात्रा के लिए ईरान की किसी भी सीमा को पार करने का प्रयास न करें। एक रिपोर्ट।
दूतावास ने कहा कि उनकी जानकारी और मार्गदर्शन के बिना सीमाओं के माध्यम से ईरान छोड़ने के प्रयास करने वाले भारतीय नागरिकों को गंभीर रसद और आवर्जन संबंधी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। दूतावास ने कहा कि भूमि सीमाओं की ओर अनियोजित आवागमन को सख्ती से रोका जाएगा। वे भारतीय समुदाय के सदस्यों के साथ नियमित संपर्क में है और जहां भी आवश्यक हो समन्वित व्यवस्थाएं की जा रही हैं। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
भारतीय जनता पार्टी के संजय भाटिया और कांग्रेस पार्टी के कर्मवीर सिंह बौद्ध हरियाणा में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए निर्वाचित हो गए हैं। 2 सीटों के लिए मतदान कल हुआ था। लोकसभा में आज रेल मंत्रालय की 2026-27 के लिए अनुदान मांगों पर आगे की चर्चा और मतदान होगा। उधर राज्यसभा में आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन विनियोग विधेयक 2026 को विचार और पारित कराने के लिए पेश कर सकती हैं। पश्चिम बंगाल में चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने विशेष प्रबंध किए हैं। सख्त निगरानी के लिए आधुनिकतम तकनीक के उपयोग पर बल दिया जाएगा। आयोग के सूत्रों के अनुसार 100% मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग अनिवार्य होगी। राज्य के चुनाव इतिहास में पहली बार निगरानी और अवलोकन के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर स्थित एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कल से पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। प्रस्तुत है हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट।
इस वर्ष 70 से अधिक किस्मों के लगभग 18 लाख ट्यूलिप, साथ ही डेफोडिल, हायसिंथ और नार्सिसस सहित लगभग 1 लाख अन्य कंदीय फूल लगाए गए हैं। इससे घाटी के वसंत परिदृश्य में जीवंत रंग जुड़ गए हैं। मुख्यमंत्री ने दुनिया भर से आने वाले पर्यटकों से अपील की कि वो वसंत ऋतु के दौरान जम्मू और कश्मीर आए और इसकी बेजोड़ प्राकृतिक सुंदरता का अनुभव करें।
जम्मू कश्मीर के लिए हमारे टूरिज्म इंडस्ट्री से ताल्लुक रखने वाले तमाम लोगों के लिए एक नई बहार हो, लोग जम्मू कश्मीर की खूबसूरती का फायदा ले सकें।
ट्यूलिप शो 2026 कश्मीर क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देगा, क्योंकि कश्मीर क्षेत्र में कई ऑफबीट पर्यटन स्थलों को पर्यटन स्थलों की सूची में जोड़ा गया है। आकाशवाणी समाचार श्रीनगर से मैं तारिक राठौर।
मौसम विभाग ने कल नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में छिटपुट स्थानों पर बिजली चमकने और तेज हवाएं चलने के साथ साथ आंधी चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों के दौरान झारखंड, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी इसी तरह का मौसम बना रहने की संभावना है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।